तुम
जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम
आशा हमें है विश्वास है हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम
जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम
आशा हमें है विश्वास है हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम
जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम
इस दुनिया के दुखों से बचा लोगे तुम
इस दुनिया के दुखों से बचा लोगे तुम
आशा हमें है विश्वास है हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम
जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम
का विषय है ट्रस्टी जीवन ट्रस्टी मतलब क्या ट्रस्टी मीन्स ट्रस्टी को पता होता है कि जो भी हमें मिला है जो भी मुझे जवाबदारियां दी गई है मैं इसका मालिक नहीं हूं मुझे सिर्फ इसकी संभाल करनी है तो बाबा ने भी हमें ट्रस्टी जीवन जीना सिखाया है तो जैसे कहानी है राजा जनक की एक सन्यासी था तो उसको राजा से थोड़ी जलन हो रही थी उसे लग रहा था कि मैं सन्यासी जीवन में हूं तो भी मैं इतना खुश नहीं रहता जितना कि ये राजा रहता है राजा के पास सब कुछ है धन दौलत वैभव फिर भी वो उसकी बुद्धि उसमें नहीं है तो वो राजा से पूछता है कि इसका राज क्या है तो राजा बताता है राजा बोलता है आपको इसका राज जानना है तो आप ऐसा करो ये जो मेरा पूरा जो है महल और उसमें जो भी वैभव है जो भी है उसको आप एक बार देख कर आओ और कहता है एक दिया देता है साथ में और कहता है बस ये इतना ध्यान रखना कि ये दिया ना बुझ पाए तो वो जाता है देखने के लिए और देख कर पूरा वापस आता है तो राजा ने पूछा कि देखा आपने क्या मिला आपको क्या दिखा तो वो कहता है कि नहीं मैंने देखा ही नहीं क्यों नहीं देखा तो उसने कहा कि आपने कहा था कि ये दिया नहीं बुझना चाहिए तो मेरा पूरा ध्यान इस दिए पर ही था कि ये कहीं बुझना जाए इसलिए मैंने ये सब कुछ देखा ही नहीं कुछ भी नहीं देखा तो बस राजा ने कहा कि यही आंसर है मेरी खुशी का कि मैं रहता इन सब धन दौलत वैभव साधनों के बीच हूं लेकिन मेरा पूरा ध्यान उस एक परमात्मा की ओर रहता है उसकी बताई हुई जो शिक्षाएं हैं उस पर मेरा पूरा ध्यान केंद्रित रहता है इसीलिए मैं खुश रहता हूं यानी मेरी बुद्धि इन चीजों में नहीं रहती है तो ऐसे ही बाबा ने भी हमें ट्रस्टी जीवन जीना सिखाया है ट्रस्टी जीवन के बहुत सारे फायदे भी बाबा ने हमें बताए हैं मुरलियों में जैसे अगर हम ट्रस्टी जीवन जीते हैं तो उसके फायदे हमारे अंदर संपन्नता आएंगी संतुष्टता आएंगी खुशी आएंगी एक न्यारा और प्यारापन रहेगा जीवन में निश्चिंत रहेंगे, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा, एक रस अवस्था बनेगी और बंधन मुक्त स्थिति और मौज वाली जीवन रहेंगे। ऐसे अनेक फायदे इस स्ट्रेस्ट्री जीवन के हुए हमें होंगे। अगर जनरली जो मैं यहाँ पे पॉइंट्स आपको बताऊंगी, जो भी बाबा ने हमको साकार मुरलियों में या अवक्त मुरलियों में बताया है, उसी का मंथन अभी हम आपके सामने रखेंगे। तो जैसा कि हर एक आत्मा के जीवन में चार बातें होती हैं, उन चार बातों से ही उसे हर आत्मा को पार करना है और वो चार बातें ही उसके सामने पेपर के रूप में आती है। तो वो चार बातें हैं तन, मन, धन और जन। ये चार बातों से हमको गुजरना होता है। तो बाबा ने हमें इन चार बातों में ही ट्रस्टी बनने का जो डायरेक्शन दिए हैं, तो अच्छा, इसका अगर हम अपने आप को ट्रस्टी ना समझ के गृहस्थी समझते हैं, तो गृहस्थी समझना माना देहभान, देहभान माना दुखी, सदा दुखी और माया का आह्वान करना। तो सबसे पहले हम तन का लेंगे। तो तन जो हमें बाबा ने दिया है, ये मेरा नहीं है, ऐसा समझना है कि मैं इस तन में अवतरित आत्मा हूं और सेवा अर्थ मुझे ये तन मिला है, इसे अमानत समझ के इसकी संभाल करनी है। अच्छा, फिर ऐसा भी नहीं कि इसे नेग्लेक्ट करना है, तन का हमें पूरा ध्यान रखना है, हमें अपने डाइट का पूरा ध्यान रखना है, तन की स्वच्छता का ध्यान रखना है और इसमें इसे जो भी एक्सरसाइज यानी इसको हेल्दी रखने के लिए जो काम करना है वो तो हमें करना ही है, क्योंकि ये तन से हमें सेवा करनी है। तो इसे नेग्लेक्ट भी नहीं करना है और टू मच बुद्धि भी इसमें डालनी नहीं है। तो इस तरह से बैलेंस रखते हुए तन का हमें ट्रस्टी बनना है। अब आती है बात मन की। तो मन के लिए बाबा ने बताया है कि मन में हमेशा मैं और मेरा, ये दो बातें चलती है। तो जहां भी मैंपन है, कि जैसे देह अभिमान वाला मैं, कि मैं डॉक्टर हूं, मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं, तो ये हमारा रोल है। तो ये अपने माइंड को हमें बताना है कि ये मैं नहीं हूं, ये सिर्फ मुझे भगवान ने रोल दिया है, बाबा ने रोल दिया है, वो मुझे बताना है। मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूं और जो भी बाबा ने हमें स्वमान दिए हैं, उन स्वमानों का अभ्यास हमें करना है और वो मैं हूं, मेरा। अब जैसे मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी ड्यूटी, मेरी जवाबदारी, तो ऐसे अनेक मेरे मेरे के लिस्ट बाबा ने हमें बताई है। तो मेरा सिर्फ कौन? मेरा सिर्फ एक बाबा, बाकी कुछ भी मेरा नहीं। बाबा ने तो हमें मुरलियों में ये भी बताया है कि अगर आप दफ्तर में काम करते हो तो ऐसे समझो कि ये इसका डायरेक्टर बाबा है, और अगर हमारा कोई बिजनेस है तो ये समझो कि ये भी मेरा नहीं है, ये बाबा है इसका मालिक, मैं ट्रस्टी हूं, मुझे सिर्फ संभालना है। तो मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा बिजनेस, नथिंग, कुछ भी मेरा नहीं है, सब चीजों को हमें ट्रस्टी बन के संभालना है। वस्तु, वैभव, व्यक्ति, कुछ भी मेरा नहीं, न नाम मानशान, क्योंकि जो हम अभी बाबा, जो हम बाबा के बच्चे बने हैं, जो हम योग कर रहे हैं, जो तपस्या कर रहे हैं, इसका फल हमें मिल रहा है, सारे वैभव साधन, लेकिन हमारी बुद्धि इसमें नहीं जाना है। बाबा ने कहा इन सब चीजों को आप यूज करो लेकिन बुद्धि इसमें नहीं डालनी है, ये सब हमें अपनी तपस्या का फल हमें मिल रहा है, लेकिन ट्रस्टी बन के इन साधनों का, वैभव का हमें यूज करना है। अच्छा, और भी सूक्ष्म बातें बाबा ने मैं और मेरे की बताई, ये तो मोटी मोटी बातें हो गई, लेकिन कई बार हमको लगता है कि मेरा विचार है ना, तो बाबा कहते हैं आपका विचार भी नहीं है। हाँ, मेरी विशेषता, मेरी हैंडलिंग पावर, मेरी कंट्रोलिंग पावर, ये सब चीजें भी मेरी नहीं है। ये भी नहीं सोचना है कि ये सब मेरा है। इन सब चीजों के लिए भी ट्रस्टी, जो भी विशेषताएं हैं जो भगवान ने हमें दी है हर एक को, ये भी मेरी नहीं है, बाबा ने दी है, और ये एक प्रभु प्रसाद है, और इसे मुझे सिर्फ लोगों को बांटना है। तो कई बार हम लोग बाबा कहते हैं कि मेरी जवाबदारी, हाँ मेरा काम, कुछ भी मेरा नहीं, ये सब मेरे की भी चेकिंग होनी चाहिए। और दूसरा मेरापन होता है दिल शिकस्त वाला, जैसे पता नहीं मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, पता नहीं होऊंगा नहीं होऊंगा, हाँ मेरा योग यथार्थ नहीं है, मुझे सेवा का इतना चांस नहीं मिलता। तो बाबा कहते हैं ऐसे दिल शिकस्त वाली बातें भी नहीं, पता नहीं, पता नहीं होऊंगा नहीं होऊंगा, ये भी आपको ऐसा दिल शिकस्त भी नहीं होना, ये भी बाबा पे सौंप दो, ये भी नहीं सोचो। तो इतना सूक्ष्म में बाबा ने हमें मुरलियों में मैं और मेरा का कैसे ट्रस्टी बनना है ये सिखाया। इसके बाद तन मन धन, तो धन के लिए भी बाबा ने हमें श्रीमत दी है। तो बाबा जो धन है वो भी मेरा, जो भी मुझे मिला है वो मेरा नहीं है, मुझे सिर्फ इसके संभाल करनी है। धन के बारे में बाबा ने टाइम टू टाइम बहुत सारे हमें डायरेक्शन दिए हैं कि धन को कैसे यूज करना है। और बाबा ने ये भी कहा है कि अगर धन आपका ऊपर नीचे भी हो जाए तो भी आपकी खुशी नहीं गुम होनी चाहिए, क्योंकि धन ये आप उसे ट्रस्टी समझ के संभालना है। तो वो ऊपर नीचे भी हुआ तो आपकी खुशी गायब नहीं होनी चाहिए। और साकार मूल्यों में तो बाबा हमेशा कहते हैं कि अभी तो समय ऐसा चल रहा है कि आपके पोतरे धोतरे भी खाने वाले नहीं हैं, तो इन सब बातों पे हमें पूरा निश्चय करते हुए निश्चिंत रहना है। और बाबा ने ये भी कहा है कि बाबा आपको दाल रोटी देने के लिए बंधा हुआ है, साथ ही आपके साथियों को भी दाल रोटी देने के लिए बंधा हुआ है, बाबा आपको कभी भूखा रख नहीं सकता। ये 2004 के अवक्त मूल्यों में बाबा ने ये सब हमें बताया है। साथ में बाबा ने हमें ये भी कहा है कि अगर आपके पास धन है तो आप भले मकान बनाओ, भले रंगीन ड्रेस पहनो, घूमो फिरो मौज करो, लेकिन कैसे ट्रस्टी बन के बाबा की याद में, उसमें अपना अटैचमेंट नहीं रखना है। फिर इसके बाद आती है चौथी जन की बात। तो जन माना हमारे संबंध संपर्क, तो जैसे मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा सेंटर, मेरे सेवा साथी, हाँ ये कुछ भी मेरा नहीं, आत्मिक स्थिति में स्थित रहना है। और ये सब सबको आत्मा समझना है, अपने बच्चों को आत्मा, अपने पति को आत्मा, सेवा साथियों को सबको आत्मा आत्मा आत्मा, भाई भाई जैसे कल की मुरली में भी बाबा ने बताया, और खुद को भी आत्मा आत्मिक स्थिति में रहना है। तो मुझे तो एक भाई ने मधुबन में है सीनियर भाई, जस्ट मैंने उनसे पूछा कि क्या पुरुषार्थ करना चाहिए अभी, तो उन्होंने कहा कुछ भी नहीं, बस आत्मिक स्थिति का, बस खुद को आत्मा समझो बस, और कोई भी पुरुषार्थ नहीं करो। तो उन्होंने कहा कि जैसे अगर आप अपने आप को आत्मिक स्थिति में स्थित करते हो तो बाबा की याद ऑटोमेटिक रहती है, बाबा की याद आत्मिक स्थिति में रहने से ऑटोमेटिक रहती, करना नहीं पड़ता है। जब हम देहभान में आते हैं तब बाबा की याद भूलती है, आत्मिक स्थिति में तो याद रहती ही रहती है, करने की जरूरत नहीं है। तो मेन पुरुषार्थ है हमारा आत्मिक स्थिति, और जैसे ही हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं तो हमें हमारे अंदर जो आत्मा के जो ओरिजिनल गुण है, जो बाबा ने बताए हैं सातों गुण, तो वो हमारे अंदर ऑटोमेटिक इमर्ज होते हैं। उसके लिए भी हमें एक एक गुण और शक्तियां लाने की मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली इमर्ज हो जाती है। तो बस हमारा मेन पुरुषार्थ है आत्मिक स्थिति और सबको आत्मा देखना। तो और बाबा ने ये भी बताया कि जैसे अगर हम प्रवृत्ति में रहने वाले हैं तो प्रवृत्ति मीन्स परवृत्ति, और लौकिकता तो को अलौकिकता में परिवर्तन कैसे करना है, इसके भी डायरेक्शन, यानी आत्मिक स्थिति से लौकिकता भी अलौकिकता में परिवर्तन हो जाएंगी, हमारा घर एक मंदिर बन जाएगा और बाबा ने कहा है उसमें से पवित्रता की खुशबू आएंगी, जैसे अगरबत्ती की खुशबू चारों ओर फैलती है। और ये सब यानी सिर्फ सुनने सुनाने की बातें नहीं है, ये अगर हमने किया तो रियली ऐसा होता है कि आप जैसे मंदिर का वातावरण होता है वहां जाने से सबको अच्छा लगता है, तो जिस घर में जो सोल कॉन्शियस आत्माएं रहेंगी, जो सोल कॉन्शियस स्थिति में रहेंगे, तो सच में वो घर एक मंदिर जैसा हो जाएगा और उससे दिव्य गुणों की पवित्रता की खुशबू आएंगी। और ये सब चीजों में यानी हमें भी फील होना चाहिए और हमारे जो साथ में रहते हैं सेवा साथी उनका भी सर्टिफिकेट हमें मिलना चाहिए, साथ साथ बाबा का भी। और कदम कदम पे हमें जो भी ट्रस्टी जीवन अगर हम जी रहे हैं तो हर बात के लिए बाबा से राय लेनी है, हर बात बाबा से पूछनी है। साथ में बाबा ने हर एक के लिए डायरेक्शन दिया, प्रवृत्ति वालों के लिए दिया है, सेंटर्स पर रहने वालों के लिए दिया है, कुमार कुमारियों के लिए। तो जैसे बाबा ने कहा है मेरा सेंटर, मेरी सेवा, मेरा एरिया, कुछ भी नथिंग, मेरा सब बाबा के हवाले कर दो और निश्चिंत हो जाओ। या जैसे कुमार कुमारियों को भी बहुत बार जीवन हम बाबा को दे देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे देह अभिमान आ जाता है कि कोई सेवा साथी चाहिए, कोई शेयर करने वाला चाहिए। तो बाबा ने उसके लिए भी कहा कि नहीं, सब कुछ सारे संबंध मेरे से। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि एकदम न्यारा हो जाना, न्यारा और प्यारा का बैलेंस भी बाबा ने बताया है। बाबा ने कहा है कि सबके साथ रहो, सबके साथ रूहानी प्यार से रहो, रहम रखो, रूहानी प्यार रखो, लेकिन किसी एक से अटैचमेंट नहीं कि यही चाहिए, इसी से अच्छा लगता है। अभी रिसेंटली बाबा ने अव्यक्त मुरली में कहा। तो माना ज्ञान माना क्या है, एक समझ है। ज्ञान माना जैसे बाबा ने, हम लोग क्या करते हैं कि वर्ड टू वर्ड ले लेते हैं कोई भी बात, तो वर्ड टू वर्ड नहीं लेना है, उसकी गहराई में जाना है, हर एक बात को समझना है। माना हमारे अंदर गंभीरता भी होनी चाहिए तो रमणीकता भी होनी चाहिए। यानी एकदम बाबा ने कहा है कि न्यारा बन जाओ तो ऐसा कि किसी से बात नहीं करना, मुझे बाबा को याद करना है, मुझे ये करना है ना, ऐसा नहीं। सबके बीच में रहते हुए, सबके इमोशनल नीड्स को समझते हुए हमें ऐसे बाबा के ज्ञान में चलना है। और ये सब बातें जो है, पहले तो ये बहुत इजी है सब करना, एंड इट्स नॉट सो डिफिकल्ट, बहुत ही इजी है। सिर्फ हमें इन बातों पे पूरा 100% निश्चय होना चाहिए, पूरा बाबा जो कह रहे हैं बाबा के एक एक वर्षन पे हम लोग को पहले 100% निश्चय होना चाहिए, इसमें जरा भी संशय नहीं होना। तो यानी ये सब करना बहुत इजी हो जाएगा। और बाबा ने ये भी कहा है कि और सच्चे साफ दिल होना बहुत जरूरी है। तो सच्चे साफ दिल अगर हमारी है, सब कुछ बाबा पे सौंप दिया है, तो बाबा ने कहा है आप माला में बहुत ज्यादा आगे नंबर ले सकते हो। और एक पुरुषार्थ हमें करना चाहिए कि बाबा ने जितने भी अव्यक्त मुरलियां बाबा की चली है वो हमें रोज पढ़नी है। जैसे मैं तो ये करती हूं कि जब साकार मुरली पढ़ते हैं हम लोग, तो साकार मुरली के तुरंत बाद अव्यक्त मुरली पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि हमने अगर एक टाइम फिक्स कर दिया कि इस टाइम में पढ़ेंगे या रात को सोते वक्त पढ़ेंगे, तो जनरली हम लोग कई बार इतने टायर्ड हो जाते हैं दिन भर की नहीं पढ़ पाते हैं रात में सोते वक्त। तो ऐसा एक नियम आप बना लो कि जब साकार मुरली होती है, सेंटर पर पढ़ते हैं घर में जो भी, तो साकार मुरली के तुरंत बाद अव्यक्त मुरली पढ़ना चाहिए, तो वो पढ़नी हो जाती है। और अव्यक्त मुरलियों में बाबा ने सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हर कार्य की इन डिटेल श्रीमत दी है, और बाबा की जो श्रीमत है वो यानी उस पत्थर की लकीर है, वो होता ही होता है। तो इसीलिए डेली अव्यक्त मुरली पढ़नी है, क्योंकि अभी समय अनुसार तो समस्याएं बढ़ने वाली है, اور دوسرا یہ بھی کہ جو ہم پانی پیتے ہیں تو پانی کو جو جس میں ہم بھرتے ہیں پانی تو اس کو ایک اچھا 5-10 منٹ وہ پانی کو پورا چارج کرنا چاہیے بابا کی یاد سے. تو پانی پہ تو بہت سارے ایکسپریمنٹ ہو چکے ہیں کہ سائنٹیفکلی بھی پروونڈ ہے کہ پانی کا افیکٹ ہمارے من پہ بہت پڑتا ہے. تو آپ کے گھروں میں یا جہاں پہ بھی سینٹر پہ پانی جس میں بھرتے ہیں تو صبح صبح آپ اس کو اچھا ایک 10 منٹ تک اچھی طرح سے بابا کی یاد میں اس کو چارج کرنا. تو آپ نے دیکھنا اس کا ریزلٹ بہت ڈرامیٹیکلی ہوتا ہے اپنا, یعنی کافی فرق پڑتا ہے اس کا تن اور من دونوں پہ. اور مجھے تو جیسا بابا کا لائف میں ان سب چیزوں کا بہت زیادہ ایکسپیرئنس ہے اور کبھی ایسی چنتا نہیں رہتی کہ کیا ہوگا کیسے ہوگا. ایک ٹرسٹی بھاؤ رہنے سے منا ہم لوگ نشچنت ہو جاتے ہیں, ایک دم بے فکر بادشاہ والی استھتی بنتی ہے. اور شارٹ میں میں ایک اپنا انوبھو بھی سناتی ہوں سچن بھائی کا. سچن بھائی ایسے بھی لوکک میں بھی رشتے میں آتے ہیں. تو ہم 2004 میں یہاں پہ مائنڈ باڈی میڈیسن میں ملنے آئے تھے بابا سے. تو اس کے بعد ہم کو یہاں پہ پتا لگا کہ پہلے تو کچھ پتا نہیں تھا کہ یہاں پہ پرماتما آتے ہیں, بھگوان آتے ہیں. تو ہم کو لگا کہ پتا نہیں بھگوان کیسے آتے ہیں یہاں پہ. تو میں نے وہ سینٹر پہ جا کے کہا کہ ہم نے وہاں سنا ہے وہاں بھگوان آتے ہیں, تو ہم کو بھی دیکھنا ہے وہ بھگوان کیسے آتے ہیں وہاں پہ جا کے. تو پھر دیدی نے ہم کو کچھ بتایا کہ وہاں پہ ایسا ایسا تھوڑا آپ کو نیم کرنے ہیں, پھر اس کے بعد ہی آپ وہاں پہ دیکھنے جا سکتے ہو. تم نے پوچھا کتنے دن, تو بولے کم سے کم 6 مہینے. تو ٹھیک ہے, تو 4 مہینے بعد ہی ہم نے دیدی کو کہا ہم کو بھیج دو نا, ہم کو دیکھنا ہے وہاں بھگوان کیسے آتے ہیں. تو پھر دیدی نے ہم کو یہاں بھیجا. پھر سچن بھائی کو پتا چلا کہ ہم لوگ یہاں آ رہے, تو ان کو پتا لگا بابا سے ملنے آئے. لیکن ہم کو اتنا ڈیٹیل کچھ بھی یہاں پتا نہیں تھا. اور ہم لوگ جس دن بابا آنے والے تھے اسی دن یہاں آئے, اور نیکسٹ ڈے ہم جانے والے تھے ترنت. تو پھر انہوں نے ہمارا ریزرویشن کینسل کرایا, 5-6 دن اور یہاں پہ رکوایا, اور سارا کچھ دکھایا, سارا گیان کلیئر کرایا. تو جیسے برہما بابا کا سنا کہ ایک ایک چیز دکھاتے تھے, کوئی بھی آتا تھا ہر ڈپارٹمنٹ کا, ہر چھوٹی چھوٹی چیز. تو اسی طرح سے انہوں نے بھی ہمیں کہاں کپڑے دھلتے ہیں, کہاں کپڑے سلائی ہوتے ہیں, کھانا کس سے بنتا ہے کیا, تو ہر چیز انہوں نے دکھائی, ہر گیان کی پوائنٹ کلیئر. نہیں, بھگوان کا تو اسی سمے انوبھو ہو گیا, یعنی بابا کا اوترن جب ہوا نا تو وہ انوبھو ڈائریکٹ انوبھو ہو گیا کہ سچ میں یہاں پہ بھگوان آتے ہیں. پھر انہوں نے پورا گیان کلیئر کرایا. اور اس سمے جیسے کہ مرلیاں ایسے آنے میں بہت ٹائم لگتی تھی نا, جیسے موبائل وغیرہ نہیں تھے 2004-5 میں, تھے بھی تو اتنا اس میں فنکشنز نہیں تھے. تو جیسے بابا کا اوترن ہوتا تھا نیکسٹ ڈے سچن بھائی کا فون آتا تھا کہ بابا نے یہ بولا وہ بولا وہ بولا, اس کا مطلب یہ ہے وہ ہے. پھر بیچ بیچ میں فون آتے تھے کہ آپ کی سیوائیں کیسی چل رہی ہے, وہاں کا سارا میں نے اتنے ڈاکٹرز کو تیار کیا, آپ نے کتنوں کو کیا ہے. تو ایسا سیوا کا بھی بل بھرا یہ. پھر اس کے بعد انہوں نے نیکسٹ ایئر آئے تو بولے ابھی آپ کو اپنے پالنا بہت لے لی, ابھی پالنا دینے کا ٹائم ہے آپ کا, لینے کا ہو گیا. پھر اس کے بعد اور آئے تو کہا کہ ابھی آپ بڑے ہو گئے ہو. تو اس طرح سے انہوں نے ان کا کافی میرا رول رہا ہے بابا کے قریب کرنے. ہاں ٹیچر ہے تو مدھوبن میں, نیچے شانتی ون میں کچھ بھائی ہے تو وہ تو بولتے تھے کہ کوچ بولتے تھے ان کو, کوچ ہے کر کے آپ کا. اور دیکھو ہم جیسے بابا کے گیان میں چلتے ہیں تو ہمارے نا سنکلپوں میں ایک پاور آ جاتی ہے, ہمارے سنکلپ سدھ ہونا چالو ہو جاتے ہیں. کیونکہ بابا نے کہا ہے کہ صاف دل تو مراد حاصل. تو ہماری ہر سوچ یعنی ریالٹی میں بدل جاتی ہے, ہر سنکلپ ہمارا سدھ ہو جاتا ہے, ہر اچھا بابا ہماری پوری کر دیتا ہے. صرف نمت بھاؤ, نرمان بھاونا اور سچے صاف دل ہونا. اور جو بابا نے تھوڑا سا ہمیں وکرم وناش کا بھی جو بتایا ہے, تو وکرم وناش مانا کیا کہ ہمارے سب کے سب آتماؤں کے اندر یہ والی فائل ہے, ساتوں گنوں والی فائل, اشٹ شکتیوں والی فائل, اور یہ راون کی بھی 5 اوگن جو 5 وکار ہیں ان کے بھی فائلس ہمارے اندر ہے. تو یہ کیسا ہے کہ किसी के अंदर ये परसेंटेज में है सात गुण, और ये पांच विकार सबके अंदर परसेंटेज में है, लेकिन है सबके अंदर ये फाइल है। तो विकर्म विनाशनी, जैसे जब हम बाबा को याद करते हैं तो ये जो फाइल जो हमारी मर्ज हो गई है सात गुणों वाली, ये इमर्ज होने चालू हो जाते हैं हमारे अंदर, और जो पांचों विकारों वाली जो फाइलें खुली हुई है द्वापर युग से, तो ये क्लोज होना शुरू हो जाती है। और सतोगुणी सातों गुण की फाइल्स ओपन होना चालू होती है, दैट इज विकर्म विनाश। तो जितना हम योग करेंगे तो हमारे अंदर ये बातें आती जाएंगी और हमारे अंदर खुशी बढ़ती जाएंगी। जैसे सचिन भाई ने कल भी कहा कि सजा है ना, ऐसे नहीं कि बाबा दंडा लेके बैठा है हमें सजा देने। जो हमारे मन की खुशी गायब हो जाती है, जो परेशानी बढ़ जाती है, बस यही सजा है। और जितना जितना हम योग करेंगे तो ये अवगुणों वाली फाइल क्लोज होती जाएंगी और ये सद्गुणों वाली फाइल्स ओपन होती जाएंगी, दैट इज विकर्म विनाश। तो दिनचर्या, हाँ तो मैं डॉक्टर हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट, 24 घंटे काम करती हूँ दिन भर और रात भर लेकिन पता नहीं लगता है। जैसे अगर पूरा बाबा को सौंप के जब भी कोई पेशेंट, यानी मेरा एक हैबिट बन गया है कि पेट जब हर पेशेंट का पल्स देखती हूँ तो उसको सकाश देती हूँ, यानी वो ऑटोमेटिक मोड में है, तो हर पेशेंट का पल्स देखते वक्त सकाश, तो उससे वो जल्दी से सेटिस्फाइड हो जाते हैं ज्यादा, यानी और अपनी भी अपना भी योग होता रहता है साथ साथ, यानी अपनी भी सोल कॉन्शियस स्टेज रहती है, बाबा की याद रहती है। और अमृत वेला तो पेशेंट ही करा देते हैं, डिलीवरी का पेशेंट रात में चालू रहता है तो योग भी हो जाता है और बाबा बाबा भी करते रहते हैं उसके लिए, पेशेंट के लिए, तो अमृत वेला होता है। और उसके बाद मुरली का कभी सेंटर जाते हैं, कभी घर में खुद पढ़ लेते हैं, विश्राम करते हैं ना, मैं ना, नहीं 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 होता है, मैं बता, जैसा अमृत वेला होता है उसके बाद थोड़ा देर रेस्ट करते हैं, क्योंकि दोपहर को सोने नहीं मिलता है उनको, तो इसीलिए थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर फ्रेश होके मुरली, सेंटर पे जाना हुआ तो सेंटर पे भी जाते हैं, कभी फिर पेशेंट वगैरह रहे तो घर में पढ़ते हैं। और मुरली पढ़ने के बाद तुरंत अव्यक्तवाणी, तुरंत, क्योंकि फिर दिन भर टाइम नहीं होता है तो उसी समय, और अव्यक्तवाणी पढ़ने के बाद 5 मिनट का मेडिटेशन बस उस पे, जो बाबा ने अव्यक्तवाणी में पढ़ा ना उसी पर रिफ्लेक्शन, यानी उसका मीनिंग क्या है और उसको कैसे अपने को धारण करना है, बस उस पर मेडिटेशन 5 मिनट, वो जरूरी है, यानी वो दिन भरे के लिए फिर काम में आता है अपने। फिर उसके बाद वही अपना रूटीन, नाश्ता और अपना घर का थोड़ा रूटीन, 11 बजे से पेशेंट नॉन स्टॉप 4 बजे तक, 4:30 बजे तक, वही हर एक आत्मा है, बाबा की याद में दवाई, बाबा की याद में उनको समझाना, वो हो गया। फिर 4:30 को फिर खाना खा के नीचे चले जाते हैं, फिर बाद में फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, फिर शाम, फिर थोड़ा रेस्ट, फिर अपना शाम का योग, शाम 6:30 से 7:30 वो योग, क्योंकि सुबह का तो भी कभी कभी थोड़ा अमृत वेला तो कह रहे सचिन भाई जैसा हर कोई, यानी ये नहीं होता है अमृत वेला, कई बार थोड़ा सा टाइमिंग इधर उधर एक आधे बार हो जाता है, लेकिन शाम के टाइम तो बहुत फ्रेशनेस रहती है ना, और शाम में पूरा वातावरण भी बहुत पावरफुल रहता है, भक्ति का भी वाइब्रेशंस, यानी वातावरण में भक्ति के भी वाइब्रेशंस रहते हैं, अच्छा रहते हैं। तो 6:30 से 7:30 का योग मिस नहीं करते कभी भी, क्योंकि उस समय सुस्ती भी नहीं होती है, तो वो योग होने के बाद 7:30 से फिर पेशेंट्स रात को 9 बजे तक, फिर रात में इमरजेंसीज, तो 9 बजे, यानी 7:30 को खाना खा के नीचे जाते हैं, फिर क्योंकि अमृत वेला भी यानी करना है तो जल्दी खाना खाना है, फिर उसके बाद अपना रात को अगर टाइम मिला तो कुछ बाबा का पढ़ना, नहीं तो हमारा मेडिकल रिलेटेड कुछ पढ़ते हैं। फिर मुरली क्लास पहले चलता था, अभी नहीं, अभी बंद कर दिया है, तो पहले मुरली क्लास चलता था तो आधा घंटा मैंने घर में गीता पाठशाला थी तो वहां पे क्लास भी मैं कराती थी, लेकिन फिर अभी मैंने थोड़ा बंद कर दिया है क्योंकि سینٹر پاس میں ہی ہے تو وہیں پہ چلے جاتے ہیں میکسیمم لوگ. پھر یوگ کرنے کے لیے سب وہاں آتے ہیں. کلاس ابھی نہیں لیتی ہوں, وہ ٹائم پہ تھوڑا میں پیشنٹ دیکھتی ہوں, کیونکہ تھوڑا سا کئی بار ڈس سروس بھی ہوتا ہے نا ہم لوگ, تو ڈس سروس نہیں ہونا تو پیشنٹ ادھر ویٹ کرتے رہتے ہیں کب آئیں گے میڈم کب آئیں گے, تو اسی لیے ابھی. ہاں کیا بولے, ہاں کمرہ بنا ہے, یوگ چلتا ہے وہاں, سب آ کے یوگ کرتے ہیں, لیکن کلاس ابھی میں نے وہاں کا بند کر کے وہ ٹائم میں تھوڑا او پی ڈی کو دے رہی ہوں, کیونکہ پیشنٹ کو ویٹ کرنا, ابھی بیماریاں بہت بڑھ گئی ہیں نا, پیشنٹ سے بڑھ گئے, اور پتا نہیں بابا کے بچوں پہ پیشنٹ کو بھروسہ بھی ہوتا ہے. پیشنٹ کو گیان یعنی پہلے تو میں ہر ایک کو پکڑ کے گیان دیتی تھی, ابھی نہیں دیتی, ابھی میچوریٹی آ جاتی ہے نا تو پھر وہ پیشنٹ وہ سب بولتے ہیں کہ بس میڈم تو وہی بات کرتے ہیں, تو پھر ابھی میں ان کو یعنی جیسے کبھی گربھ سنسکار یا پھر اس ٹائپ کا یعنی ایسے ابھی جیسے شروع میں تھوڑا سا بہت رہتا ہے نا تو ابھی تھوڑا سا میچوریٹی سے. ہاں ڈاکٹر صاحب دیتے ہیں نا یعنی جس کو ایسا ابھی پیشنٹ ہی پوچھتے ہیں نا, ابھی پتا تو ہے سب کو تو ان کو بتاتے ہیں ہم لوگ کے ایسے ایسے پروگرام سے یعنی پکڑ کے ابھی سب کو گیان نہیں سناتے ہیں پہلے جیسا, ابھی جیسا کہ پہلے نئے نا تو پھر اتنی میچوریٹی نہیں رہتی ہے نا, اور جیسے کہ دیکھو گیان ہمارا بہت اچھا ہے لیکن ہم لوگ نا تھوڑا سا اس کے ہماری سمجھ تھوڑی سی کم پڑ جاتی, تو کئی بار نا سروس کی جگہ ڈس سروس بھی کرتے ہیں ہم لوگ. تو جیسے نیارا پیارا کا جو بیلنس میں نے بتایا کہ جیسے کئی ہم لوگ یہ جیسے جو نان بیکرز ہیں ان کو ایک دم ہی ایسے گنی آتا ہے, یہ وہ ایسا نہیں, رحم ہونا چاہیے ہر ایک کے لیے, اپنا پن ہونا چاہیے, پیار ہونا چاہیے, سب کو ٹائم دینا چاہیے. اگر ہم لوگ یوگ کا ٹائم ہے اور ہم لوگ وہ یوگ میں وہ کرنٹ ہی نہیں آ رہی ہے, وہ چینجز ہی نہیں ہو رہے ہیں, تو ایکچولی کوئی میننگ نہیں ہے ایسا. تو اس لیے میں نے بھی یہ سب چیزیں پہلے میں پکڑ کے ساروں کو کلاس لینا, یہ ابھی میں سوچتی ہوں کہ بہنیں ہیں سینٹر پہ ان کو بتانا, اپن نے پیشنٹ دیکھنے کا, میں نے پیشنٹ کا اتنا ویٹ کرا کے بیٹھے رہو, یعنی یہ سب میچوریٹی ہم کو ہونی چاہیے. یعنی گیان بہت اچھا ہے ہمارا, اس میں بہت انجوائے فل لائف ہے. بابا کہتے ہیں اس سمے موج نہیں کروں گے تو کب کروں گے, موجوں کی یوگ ہے, محبت میں جینے کی یوگ ہے, موجوں کی یوگ ہے, لیکن اس کو اچھے سے سمجھ کے اگر ہم اپلائی کرتے ہیں, یعنی ہمارے اندر یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ یعنی کب ہم کو یوگ میں بیٹھنا ہے, کب کون سے کام کرنے ہیں, کیسے آتماؤں کی ایموشنل نیڈس کو سمجھنا ہے, پریوار والوں کو بھی جو گیان میں نہیں ہے ان کو بھی کیسے اچھے طرح سے سنبھالنا ہے نا. ضروری نہیں ہے کہ ہر لوگ اس چیز میں بھروسہ کریں گے, ہر کوئی گیان میں چلیں گے, لیکن ان کے ساتھ ہمارے ریلیشن کیسے اچھے رکھنے ہیں, سب کے ساتھ جیسے بیکس کے ساتھ ویسے ان کے ساتھ, تو یہ سب سمجھ ہمیں ہونی بہت ضروری, اور یہ ہوتا ہے اس کا بہت چنتن منن کریں گے یا ہمارے جو سینئرس ہیں ان سے ان کو گائیڈنس لیں گے تو ایک ہم بہت اچھی طرح سے گیان میں چل سکتے ہیں. کئی بار میں نے یہاں پہ ایک نوٹ کیا ہے کہ جیسے گھر پریوار چھوڑ کے آ جاتے ہیں کئی لوگ, ہسبینڈ چھوڑ دیں گے, بچوں کو چھوڑ دیں گے اور بس بابا بابا کر کے یہاں آ جائیں گے, تو ہے نا اب میری نظریے سے اب پتا نہیں, میں کہتی ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ کوئی دوسری آتماؤں کو اتنا دکھی کر کے بابا کے گیان میں اگر چلتے ہیں تو اس کا ایفیکٹ آپ کے اوپر بھی آئے گا نا, اور آپ کو جو پراپتی ہونی چاہیے جو آپ کے بھاگیہ میں جمع ہونا چاہیے تو مانا یہ نہیں ان کے ساتھ رہنا ہے. اگر آپ سچ میں گیانی ہیں, سچ میں سمجھدار ہیں, تو آپ کے اندر اتنی پاور ہونی چاہیے کہ کیسے بھی آتمائیں ہو, کتنا بھی ویرودھی آتمائیں ہو, ان کے ساتھ بھی بہت اچھے سے ایڈجسٹ کر کے آپ کو چلنا آنا چاہیے, نہ کہ ان کو چھوڑ کے اپنے راستے پہ نکلنا, ان کے ساتھ ہی رہنا چاہیے, ان کو بھی خوشی دینی چاہیے. ضروری نہیں ہے نا کہ وہ لوگ بھی اس پہ. ہاں ورتمان میں میرے لیے سب سے بڑی مایا نہیں رہتی ہے نا, ایسے کیسے تو سمپورن بن جائیں گے. ورتمان میں مایا نہیں, پیشنٹ کی تو نہیں ہے, پیسوں کی بھی نہیں ہے, پیسوں کے, پیسہ تو کیا ہے, بابا کہتے ہیں کہ یہ سب آپ کو ابھی سب سادھن ویبھو تو ملنے والا ہے, اگر آپ اس کے پیچھے بھاگوں گے تو وہ اور آگے آگے بھاگے گا پرچھائی کی طرح, لیکن آپ اس کے پیچھے اس کا منہ موڑ دیں گے تو وہ تو پرچھائی کی طرح آپ کے پیچھے پیچھے آئیں گی یہ سب باتیں. تو یہ سب اور بابا کے اس پہ 100% اگر بھروسہ ہے ہم کو ان سب باتوں پہ تو یہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے, یعنی سچ ہے بابا کی ساری باتیں, اس پہ کچھ چنتا کرنے کی کوئی اپنا یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے مایا سوچنا کو سوچنا نہیں, تھوڑے سے پرسنل بات ہے. تو مایا ایسی آتی ہے کہ ہم لوگ دونوں یوگل گیان میں چلتے ہیں, تو ڈاکٹر صاحب مجھے بہت زیادہ پرفیکشن کے لیے پورے ٹائم بولتے ہیں یہ ایسا نہیں ایسا ایسا نہیں ایسا کرنا, تو کئی بار مجھے تھوڑا سا فیل ہوتا ہے کہ نہیں ہم لوگ ویکس ویکس جو بولتے ہیں نا کہ اچھا یہ گیان کا ہے کہ یہ ایسے ہی کہ گیان میں چلنا, تو اس سے تھوڑا سا کئی بار یعنی کوئی کبھی کبھی ہوتا ہے فیل. تو پھر میں سوچتی ہوں کہ نہیں, یعنی اس کے پیچھے دیکھنا چاہیے کہ راز کیا ہے بولنے کا, کہ آگے بڑھانے کا ہے اور اچھا بھلائی چاہتے ہیں. تو اگر یہ بات کو ایسا کر لیا تو دیکھتے ہوئے دکھا ایسا کیسے بول سکتے ہیں, نہیں وہ تو ایسے خود نے نہیں جج کرنا ہے, یعنی ساتھیوں کا سرٹیفکیٹ چاہیے جو ہمارے آس پڑوس یعنی ساتھ میں رہتے ہیں نا جو آتمائیں, وہ بتائیں گی, ہم کیسے بتا سکتے ہیں. ہاں ان کا وہی سنا دیں گے نا. یعنی جیسے کہ بابا نے کہا نا کہ ابھی پوتری دھوتری بھی کچھ کھانے والے نہیں ہیں, ابھی سب یعنی مٹی میں مل جانا ہے, تو ڈاکٹر صاحب کا یہ پوائنٹ بہت زیادہ پکا ہے, بہت زیادہ. تو اور میرا ایسا کہنا ہے کہ یہ پوائنٹ پکا تو ہے لیکن ہمارے کچھ جواب داریاں ہیں, بچے ہیں, یہ ہے, تو ہمیں ساتھ ساتھ یعنی ٹرسٹی بن کے یہ سب کرنا ہے, پیسوں کی سنبھال, انویسٹمنٹس وغیرہ یہ سب. تو یہاں تھوڑا سا ڈفرینس آف اوپینین ہمارا ہو جاتا ہے, الگ الگ طریقے سے ہر لوگ, تو ان کا کہنا جیسا پڑ جاتا ہے کہ ابھی زیادہ ان چیزوں میں پڑھنا نہیں ہے. اور میرا ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہمیں سب کرنا ہے لیکن اس میں بدھی نہیں ڈالنی ہے, ایسا نہیں نہیں بدھی ڈالنی ہے لیکن ڈٹیچ ہو کے یعنی بہت زیادہ چنتن نہ چلے کوئی بھی چیزوں کا, بس کرنا ہے کر کے کرنا ہے, پلاننگ سے ہر چیز ہر بات جو بھی کار ویوہار ہے جو بھی جواب داریاں ہمارے لوکک میں رہتی ہے, لیکن ڈٹیچ ہو کے بدھی نہیں بہت زیادہ اس کا سوچ نہیں چلنی چاہیے, بس کرنا ہے اچھی طرح سے سب کچھ سنبھالنا ہے. ساکشاتکار میں آپ کو ریئل گھٹنا بتا رہی ہوں, میری ایک فرینڈ ہے وہاں رہتی ہے, مومیڈین ہے وہ, لندن میں رہتی ہے, اور وہ بھکتی میں جو بہت اونچا رہتے ہیں نا بہت نالج فل بھکتی میں, تو وہ پتہ نہیں ہندو کے اس میں اس کو بہت نالج ہے اور پورے ٹائم اسی میں بزی رہتی ہے بھکتی کے ہائیسٹ لیول پہ, اور قرآن کا بھی اس کو بہت زیادہ اسٹڈی ہے. تو اچانک سے اس کا مجھے پرسوں کال آیا, میں یہیں تھی اپنا پانڈو بھون میں تھی, شام کا ٹائم تھا, کچھ 8 بج رہے تھے, تو میں نے کہا کہ کیسے کال کیا آپ نے, کیا باتیں, تو بولے کچھ نہیں آپ کی یاد آ گئی اس لیے کیا. میں نے کہا اچھا کہاں ہے آپ کیا کر رہے ہو, تو میں نے کہا میں ماؤنٹ ابو میں ہوں, لائک تو ان کو تھوڑا بہت پتا ہے اس کے بارے میں بھی, تو بولے اچھی جگہ پہ ہو, تو بولے میں نے کال اس لیے کیا کہ میں میڈیٹیشن کر رہی تھی یعنی ان کا, تو اسے میں لندن شاید 4 گھنٹہ اپنا ادھر رہتا ہے ان کا ٹائم, وہ بولے کچھ تو بھی سم تھنگ 5 بج رہے ہیں یہاں پہ 4:30-5, تو میں میڈیٹیشن کر رہی تھی تو مجھے آپ کا فیس ایک دم چمکتا ہوا دکھ رہا تھا, نہیں سچ میں یعنی ایک دم 100% رائٹ پرسوں کی بات, تو ایک دم ایسا چہرہ چمکتا ہوا مجھے دکھا, اس لیے میں نے آپ کو کال کیا. یہ فرسٹ ٹائم کی بات ہے, ہاں نہیں نہیں بس ہاں اچھا اوم شانتی. वर्तमान पुरुषार्थ बस सोल कॉन्शियस स्टेज बनाने का है ना, ट्रस्टी भाव और सोल कॉन्शियस। सोल कॉन्शियस में आ ही जाता है, ऑटोमेटिक आ जाता है सब ट्रस्टी भाव वगैरह है ना। वही है कि भाई देह भान ना आए, देह भान मिटाने का कि बस मैं आत्मा हूं, बाबा ने जो सम्मान दिया वो मैं हूं और मेरा कुछ नहीं, सब कुछ बाबा का। नहीं देखो यही तो, यही मैं कहना चाह रही हूं कि समेटना नहीं है कुछ भी, करना सब है लेकिन बुद्धि बुद्धि नहीं जा, मैं बुद्धि वाला डिटैच होके करना है, डिटैच होके करना, नहीं तो इससे डिसर्विस होती है। पेशेंट भी पहले कहते थे ना मैडम, पहले सारे पेशेंट रहते थे, जब से इसमें चले गए ना पूरा ध्यान उसी में है, हॉस्पिटल में कम ध्यान देते। तो हमको लोगों को जोड़ना है ना, या फिर उनसे सर्टिफिकेट चाहिए हमको, सिर्फ खुद का नहीं लोगों का भी चाहिए। और बाबा तो बाबा के हिसाब से देगा ही हमको सर्टिफिकेट। हाँ वो क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं ऐसा लोग, छोड़ो क्यों कहते हैं। तो उन बातों पे चिंतन करना है हमको कि ऐसा ना कहे लोग, है ना। नहीं ऐसा समेटना कुछ नहीं है, सब कुछ करना है अच्छे से, जितना बेस्ट पॉसिबल कर सकते हैं। अभी अपने दादियों को देखो, ब्रह्मा बाबा को देखो, है ना। नहीं 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 देखो उस समय की बात अलग थी, अभी ब्रह्मा बाबा ने सारा छोड़ दिया और पूरा ट्रस्ट बना दिया, तो क्या हम लोग करते हैं ऐसा। बाबा ने कहा फॉलो फादर, तो फॉलो फादर कहा है, लेकिन हम ऐसे सब कुछ बेच बाज के यहां तो नहीं आ रहे हैं सब ट्रस्ट बना के। नहीं तो उन्होंने किया, वो उस समय की बात थी, उस नहीं समझ है ना, वो उन्होंने किया वो उस समय की बात थी। लेकिन बाबा भी देखो समय के हिसाब से मुर्गियों के में कितना चेंजेस है बाबा के। ये सूक्ष्म पुरुषार्थ, स्थूल अलग और सूक्ष्म अलग है। नहीं देखो हर एक के लिए हर समय के हिसाब से अलग अलग है, तो ये हमको समझना चाहिए कि समय स्थिति और हर एक का सिचुएशंस। हाँ बच्चे तो ज्ञान में ही बड़े हुए हैं और है तो बाबा पे निश्चय है। दोनों बच्चे डॉक्टर हैं, यानी एक बन गया है और एक अभी बन रही है बेटी। तो उन लोग थोड़ा सा बेटा कंफ्यूजन में था, यंग है अभी, हॉस्टल में रहता है सारे लोगों के बीच। तो इधर वो पूरी तरह से यानी पूरा यानी पूरा इधर आ गया था वो, और आ गया था और फिर कंफ्यूजन में चला गया था थोड़ा। तो फिर उसको बहुत समझाया हर चीज, हाँ तो उससे भी बहुत सीखने को मिलता है ना, अब बहुत सीखने को मिलता है हम लोग को हर दिन पर कि कैसे बाबा के ज्ञान में चलना है और कैसे अच्छे जीवन बिताना और कैसे सबको साथ में लेते हुए चलना है, कैसे किसी सबको खुश रखना है अज्ञानियों को भी। तो यही तो है ज्ञान, यही तो है ना समझ। तो हम लोग वर्ड टू वर्ड ले लेते हैं, वर्ड टू वर्ड नहीं, उसका गहराई में जाना है, हर चीज को समझना है ऐसा, दैट इज ज्ञान में। तब हमको खुशी आती है, तब हल्कापन आता है, तब हम ट्रस्टी जीवन जीते, तब हम बेफिक्र बादशाह की स्थिति में रह सकते हैं। नहीं तो अन्य आत्माओं को अगर हम दुखी करके या उनके संकल्प चला के या ये करके, तो मुझे नहीं लगता कि वो मजा आएगा, क्योंकि मैंने वैसा भी लाइफ जी के देखा है 15 सालों के ज्ञान में, और फिर थोड़ी सी और मैच्योरिटी आई तो थोड़ा सा और एडजस्ट सबके साथ करके, तो उसमें एक अलग मजा है और यानी अलग। हाँ लेकिन दादियों ने तो सब यानी दादी का जब अनुभव सुनते हैं सबके साथ वो पिकनिक जाते हैं, दादियों ने कैसा सबको खुश करा है ना, जो अपने जो यहाँ आते हैं जो इसमें कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में, तो दादियां कितना अच्छे से उनको पालना देती हैं, कितना यानी उनके साथ भी कितना उनको भी कितना अपनापन अनुभव होता है। यानी मुझे तो लगता है आज दिन तक मैंने एक भी आत्मा ऐसे नहीं देखी जो यहाँ आई है, कितनी भी विरोधी या नॉन विकिस, लेकिन خوش ہو کے جاتے ہیں ہر کوئی یہاں سے. تو جیسے کوشش کرتے ہیں لوگ, اب میرا انوبھو میں بتا رہی ہوں کہ جیسے بابا نے ایک مرلے میں بولا کہ 95% خوش ہونا چاہیے, 5% بابا گریس مارک دے رہے ہیں, تو اتنا تو نہیں لیکن میں 80% کہہ سکتی ہوں. زیادہ لوگ خوش ہیں, زیادہ لوگ خوش رہتے ہیں. اب وہ تو میاں مٹھو نہیں بننا ہے جنرلی, ان لوگوں سے وہ لوگ ہی بتائیں گے. جیسے ہم یعنی ہمارے بارے میں لوگ بولے, ہم کیا بولے, اپنے بارے میں تو ہر کوئی اچھا ہی بولیں گا. خود کا سرٹیفکیٹ, ساتھیوں کا اور بابا کا, گھر والوں کا خاص چاہیے, خاص چاہیے. اور گھر والے گیان وین نہیں سنتے ہیں, وہ ہمارے میں چینجز دیکھتے ہیں, چینجز ہمارے نیچر میں, ہماری ایکٹیویٹیز میں. وہی تو چلن چہرے سے, ابھی بابا کی ریسنٹ مرلیاں چلیے کہ بھی لوگ سن سن کے تھک گئے سب. ابھی بس انوبھو کراؤ اور چلن چہرے سے سیوا کرو, وہ منسا سیوا, مین سیوا بھی یہی ہے. اچھا, اوم شانتی. یوگ اپن ایک ایسا کرتے ہیں کہ جیسے آج اپن بابا کو اگر ٹرسٹی جیون پہ, جیسا آج کا کلاس تھا, تو کسی کو بھی کسی کے من میں اگر کوئی بوجھ ہے, کوئی چنتن چل رہا ہے کسی بات کی, تن کی یا من کی یا دھن کی یا جن کی, ہاں یہ چار چیزیں ہی ہیں لائف میں, تو اگر ان میں سے ریلیٹڈ کسی کے بھی من میں کچھ بھی ایسا ہے چنتا, تو ہر ایک کبھی آنکھ بند کر کے وہ سوچیں گے اس کے بارے میں اور بابا کو اس ڈیٹیل میں بتائیں گے ایک شارٹ میں, یعنی من میں اپنے, اور اس کو دے دیں گے بابا کو اور اس کو پرماننٹلی ڈیلیٹ کر دیں گے مائنڈ سے, اس بات کو, اس چنتا کو. کیونکہ بابا کے بھاواک کے جو ہے نا وہ پتھر کی لکیر ہے, اس پہ پورا بھروسہ ہونا ضروری ہے 100%. تو وہ دے دیں گے اور اپنے آپ کو ایک دم نشچنت, بے فکر, ہلکا انوبھو کریں گے. ٹھیک ہے, تو ہر ایک کے دل میں کچھ بھی ہے جو بات کا چنتن چل رہا ہے, جس میں بدھی بار بار جا رہی ہے, تو اس کو سوچیں گے ہر ایک اپنا. بابا سے ڈسکس کریں گے اس بات کو. بابا سے کہو کہ بابا یہ والی بات ہے, اب اس کے بارے میں آپ ہی دیکھو, آپ ہی سوچو, یہ بات میں نے آپ کو دے دی ہے. اور میں نرسنکل کو نشچنت اور بے فکر ہوں. اب میں اس بات کا دوبارہ چنتن نہیں کروں گا, مجھے پورا نشچے ہے کہ یہ ذمہ داری بابا نے لے لی ہے اور مجھے نشچنت کر دیا ہے. بابا میں کتنی بھاگیوان آتما ہوں جو سن آپ نے میری ساری جواباریاں, ساری چنتائیں, ساری سمسیاں لے لی ہیں. और आपने ये भी कहा है कि जब भी कोई समस्या है, कोई बोझ हो, तो वो मुझे दे दो। आपने ये भी कहा है कि जब भी आपको कोई समस्या हो तो आपने कहना, मेरा बाबा, मेरे साथी, आ जाओ, तो बाबा सेकंड में हाजिर हो जाएंगे। इस बात की बाबा ने गारंटी ली है। बाबा, मुझे आपके इन महावाक्यों पर संपूर्ण निश्चय है। आज से मैंने अपनी सारी जवाबदारियां, सारी चिंताएं, सारे बोझ आपके हवाले कर दिए। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
के स्वामी ये नहीं।